भारत के प्राचीन योग का रहस्य, सुषुप्त शक्तियां जगाने का रहस्य, सशक्त मन बनाने का रहस्य, विधि से सिद्धि पाने का रहस्य, अपने सत्य चेतन स्वरूप का रहस्य, ईश्वर और प्रकृति से संबंध का रहस्य, स्वस्थ तन मन पाने का रहस्य, सदियों का ज्ञान और अनुभव, योग रहस्य।
नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है दोस्तों आपका योग रहस्य में। और हमारा ये पूरा विश्वास है कि योग रहस्य की ये सारी सीरीज देखने के बाद आपके लिए जो योग है वो रहस्य नहीं रह जाएगा, वो आपका अपना हो जाएगा। आप ये जान जाएंगे कि योग आपको शक्ति भी देता है और सुंदर जीवन का अरमान भी, ये आपको स्वास्थ्य भी देता है और मुस्कान भी, ये आपको पंख भी देता है और उड़ान भी। और ये हम सब जानेंगे उनके द्वारा जो हमारे मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में, जो कि अपने आप में सभी योग के विशेषज्ञ हैं। आइए मैं आपका परिचय उनसे करवाता हूं। हमारे साथ हैं योग के इंस्ट्रक्टर बाबूलाल जी, स्वागत है आपका। माउंट आबू से हमारे साथ हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, बहुत वर्षों का, दशकों का आपके पास अनुभव है। हमें बड़ी खुशी है आप हमारे बीच हैं आज। साथ ही साथ हमारे बीच है भ्राता राम प्रकाश जी, जो कि अमेरिका से हैं। आप प्रोफेशनल इंजीनियर हैं और हमारे साथ अपने योग के आज अनुभव बांटेंगे। आपका भी स्वागत है। दोस्तों, हर एक कड़ी में हम योग की नई अनुभूतियां पाते हुए, ज्ञान पाते हुए, हम इसमें गहरे उतरते हुए जा रहे हैं। और आज आइए इसी श्रृंखला को, इन्हीं अनुभवों को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले बाबूलाल जी से पूछना चाहूंगा, आप योगा करते हैं, योगा के इंस्ट्रक्टर हैं, तो आप हमें क्या बताना चाहेंगे अपने अनुभव से योगा के बारे में?
योगा एक्सरसाइज के द्वारा हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे बॉडी के अंदर सुस्ती हटकर सदा हम चुस्त रहते हैं। इसलिए हमारी दिनचर्या में योगा बहुत जरूरी,
हमें अलर्ट करता है,
हमें अलर्ट करता है
जी, चुस्त बनाता है,
चुस्त बनाता है, सदा हम एक्टिव रहेंगे, कभी भी सुस्त नहीं, सदा चुस्त रहेंगे। योगा व्यायाम बहुत जरूरी है। साथ साथ हमें अपनी दिनचर्या में 24 घंटे में कम से कम एक आधा घंटा निकाल कर हमें योगा व्यायाम बहुत जरूरी है। योगा व्यायाम करने से कई सारे रोगों से हम सहज मुक्त भी हो सकते हैं। पिछले साल में अपना अनुभव सुना रहा हूँ, उदयपुर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 15 दिन बाद ही मैराथन माउंट आबू मैराथन दौड़ था। योगा व्यायाम में पहले से प्रैक्टिस करता था, फिर भी इतना चोट होने के पश्चात माउंट मैराथन में मैं सेकंड नंबर का विनर बन के आया था। ये प्रैक्टिकल का मेरा अनुभव है, योगा व्यायाम के द्वारा इतना रिकवरी
आपको चुस्ती भी देता है, तो आपको जल्दी अगर कुछ रोग है तो स्वस्थ भी करता
बहुत
है,
बहुत जल्दी स्वस्थ,
और आपकी प्रतिरोधक जो क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो भी बेहतर रहती है, आप पहले से बेहतर हो जाते हैं जल्दी। तो ये आपका अपना अनुभव है और बहुत ही अच्छा अनुभव है कि यदि आप किसी एक्सीडेंट से गुजरते हैं, किसी रोग से गुजर रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा सहयोगी हो सकता है उस रोग से जल्दी निजात पाने के लिए, और आप पहले से बेहतर हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं बहुत ही कम समय में। हमारे बीच भ्राता राम प्रकाश जी हैं और बहुत लंबे अरसे का आपको ध्यान का, योग का अनुभव है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे आप इतनी वहां अमेरिका की बिजी लाइफ में सब चीजों का संतुलन रखते हुए, योग और अपनी प्रोफेशनल लाइफ का, कैसे अपने जीवन को इतना खुशनुमा, इतना सरल बनाए रखते हैं?
मैंने देखा है कि योग करने से हमारे अंदर में जो खुशी और प्यार, उसका जो संचालन होता है, उससे आत्मा में उमंग उत्साह आता है, और आत्मा के उमंग उत्साह से फिर शरीर में भी ताकत आती है। शरीर में ताकत आने से एफिशिएंसी बढ़ती है, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो आप में सफलता भी होती है, लोग आपके पीछे भी होते हैं। वो कहते हैं आप इतना काम कर कैसे लेते हो विदाउट टेंशन,
तो बताते हैं आप उन्हें।
तो मैं उनको जब वो पहले बोलते हैं तब मैं कहता हूं कि मैं योगा करता हूं। मैं पहले उनको कुछ नहीं कहता हूं कि मैं योगा करता हूं, हम कहते हैं फेस वैल्यू पर हमको देखो। उनको ये तो लग जाता है पता कि हम स्पिरिचुअल हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप हमारा प्रोफेशनल जो है एफिशिएंसी देखो, हमारा कार्य देखो, फिर जब सफलता के साथ साथ टेंशन फ्री होना, ये दोनों का बैलेंस मेरे को लगता है कि इंटीग्रेट करना होता है योगा को कर्मों के बीच में।
जी, आप एक्सरसाइज के साथ साथ आप योगा का जो ध्यान का पहलू है, जो योग है, उसको भी आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो किस तरह से ये सब लाभ देता है आपको?
देखो, मैंने क्या नोट किया, कई बार योग का लोग मतलब समझते हैं शायद बैठकर चुप होकर बैठ जाना, साइलेंस में कंसंट्रेट करना। मेरे को लगता है कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज पर बस लगातार फोकस करते रहें। कंसंट्रेशन का मतलब है जो आप कर रहे हो उसमें आपकी पूरी बुद्धि लगी हुई है। आप काम पर जाते हो तो पूरी बुद्धि आपकी काम के ऊपर है, और अगर घर आते हो तो आपका सारा ध्यान बच्चों पर, अपने जो अभी हमारा परिवार है उसके ऊपर होता है।
मतलब जो आप करते हैं वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और उसको पूरी दक्षता से पूरा अटेंशन देके कर रहे हैं।
क्योंकि हमने देखा है कई बार क्या होता है, जब हम जॉब पर होते हैं तो घर की चिंता रहती है, जो वो कौन, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी वाइफ क्या कर रही है, तो काम पूरा नहीं होता है। फिर जब घर आते हैं तो काम पूरा नहीं हुआ तो उसकी चिंता होती है, आज मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो घर वाले भी तंग आ जाते हैं कि आप अपना काम यहां भी क्यों उठा के लाते हो। लेकिन हमने देखा जब काम के समय काम करते हैं और घर के समय आते हैं घर में, तो वो भी एक कंसंट्रेशन है।
बिल्कुल बिल्कुल जी, जो भी करें वो एकाग्रचित्र होकर करें, प्रसन्न होकर करें,
दैट्स बस। उसमें फिर आपको लगेगा, क्योंकि थोड़ा करेंगे ज्यादा मिलेगा तो आपको थकावट भी नहीं होगी।
बिल्कुल,
क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि कारण है क्योंकि आपने, मैं इसलिए ये शब्द कई बार कंसंट्रेशन बड़ा मुश्किल सा शब्द लगता है।
बिल्कुल,
लेकिन हम उसको कहें ना, प्यार से किसी कार्य को कर रहे हो या उसमें पूरा आप लग जाते हो,
लगन से, प्यार में ही अपने आप में एकाग्रता होती है। जिस चीज को आप तो प्यार से करते हैं बहुत एकाग्र होकर करते हैं।
काम से प्यार है क्योंकि वहां पर हम कुछ अकम्प्लिश कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, तो उसकी खुशी होती है।
जी,
और
जी,
जब घर में आते हैं तो परिवार के अपने जो भी हमारे हैं सदस्य हैं उनकी हम देखभाल करते हैं, उनसे स्नेह की अनुभूति करते और कराते हैं, तो दोनों में ही फिर बड़ा मजा आता है।
जी दीदी जी, आप तो विशेषज्ञ हैं, जीवन के हर क्षेत्र को आप बेहतर रीति से जानती हैं। आपसे भी हम सुनना चाहेंगे कि योग और योगा के बारे में आप हमें कुछ बताइए।
वास्तव में गीता में योग का हर चैप्टर में वर्णन है।
जी,
और जहां पर योग की बात भगवान ने सिखाई है वो तो एक मानसिक प्रकार का योग है। तो क्योंकि योग का अर्थ ही है जोड़ना, तो यह आध्यात्मिक रूप से जोड़ है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, और उस मिलन के द्वारा जो आंतरिक शांति शक्ति हमें प्राप्त होती है उसके आधार से जब हम जीवनचर्या चलाते हैं तो महसूस होता है कि यह जीवन तो इतना सुखदाई है।
जी, जी,
क्योंकि आंतरिक शक्ति मिलती है, परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है उनसे मन की तार जुड़ जाती है।
जी,
तो वास्तव में योग का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो तो वही है।
बिल्कुल,
लेकिन आज योग के नाम पर योगा कह करके केवल शारीरिक व्यायाम को ही महत्व दिया है और जो मानसिक रूप है उसको थोड़ा कम कर दिया है।
जी,
तो परिणाम
तो मतलब ये उसके ऊपर का फिर पहलू है कि भले आप शुरुआत इससे कर सकते हैं लेकिन आपको धीरे धीरे उस लेवल तक भी पहुंचना है। तो मेरे, आप तीनों को सुन के मुझे ऐसा लगता है, आज ऐसे लग रहा है जैसे जो व्यक्ति एक प्रोफेशनल लाइफ में है उसके लिए योगा अलर्टनेस है, फिटनेस है, बेटर परफॉर्मेंस है, लेकिन जो ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, उसके ये ईश्वर से संबंध है, आनंद है और एनलाइटनमेंट भी है। तो इसको बड़ा, इसका एक बड़ा वास्ट रूप है जो कवर होता है ये। आप उसको कहां से उठाते हैं, कहां तक आप ले रहे हैं, ये आपकी अपनी उस पर निर्भर करता है।
क्योंकि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं।
जी,
जैसे हम देखते हैं किसी को 50 किलो का वजन उठाना है, अब शारीरिक शक्ति उसके पास है नहीं और वो सोचे मैं उठाऊं तो नहीं उठा पाएगा, लेकिन जिसके पास शारीरिक शक्ति है, बल है, वो क्यों नहीं उठा पाएगा? 50 किलो भी कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। इसी प्रकार जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम उमंग चाहते, उत्साह चाहते हैं, हम चाहते ये करूं वो करूं, न जाने क्या क्या हम जीवन में करना चाहते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि निराशा आ गई उत्साह खत्म हो गया, जीवन के अंदर जो खुशी है वो चली गई, तो हम सोच में पड़ जाते हैं ये सब क्यों हुआ। इसका मूल कारण है कि मानसिक शक्ति नहीं है,
वो भी चाहिए।
चाहे शारीरिक शक्ति क्यों ना हो, पर अगर मानसिक शक्ति नहीं है तो वो मानसिक शक्ति के अभाव के कारण शारीरिक शक्ति भी कुछ काम नहीं आती
जी।
इसलिए आवश्यकता है कि पहले हम मानसिक शक्ति को बढ़ाएं,
मानसिक शक्ति भी डेवलप करें और शारीरिक शक्ति भी डेवलप करें।
मानसिक शक्ति को हम इतना महत्व दें कि वो शारीरिक शक्ति भी आएगी, क्यों नहीं आएगी,
जरूर आएगी,
अवश्य आएगी, क्योंकि शारीरिक शक्ति का आधार भी मानसिक शक्ति है
जी।
किसी के पास मानसिक शक्ति हो और शारीरिक शक्ति न भी हो, लेकिन उस मानसिक शक्ति के आधार से शारीरिक शक्ति भी आ जाएगी। और किसके पास शारीरिक शक्ति तो बहुत है लेकिन मानसिक नहीं है, तो शारीरिक शक्ति भी खत्म हो जाएगी।
तो योगा और योग दोनों को कंबाइन करना है। और दीदी जी का ऐसा मानना है कि पहले अगर योग से शुरू किया जाए तो आपकी मानसिक शक्ति इतनी अच्छी होगी तो आप कि हर तरह की जो परफॉर्मेंस है जिंदगी की वो उससे प्रभावित होगी, आप जीवन को बेहतर जी सकते हैं, उसको कार्य को उसके जो है सारे वो बेहतर ढंग से कर सकते हैं।
पर ये भी है कि हम दोनों का बैलेंस रखें,
जरूरी है,
ये बहुत जरूरी है। जब दोनों का बैलेंस होगा तो जीवन भी सुचारू रूप से चलेगा
जी। बैलेंस वैसे भी कहते हैं कि बेहतर बनाता है हर चीज में, बैलेंस की जरूरत है। ऐसे जो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज है और जो हमारी मानसिक एक्सरसाइजेज हैं, योगा का जो मानसिक पहलू है और शारीरिक पहलू है वो दोनों को कवर करें तो बेहतर हो सकता है।
बैलेंस का एक ये भी मतलब निकलता है कि इन जो एप्रोप्रिएट इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जैसे खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कितना उसमें पानी डालना है, कितना मसाला डालना है, कितना आग देना है, कितना टाइम लगेगा। अगर मैं कहूं कि 15 मिनट का काम 10 मिनट में हो जाए, आग को ऊंचा कर दूं तो सब्जी जल जाएगी ना। तो एप्रोप्रिएट जो करना वो भी एक बैलेंस के रूप में,
कौन सी चीज कितनी होनी चाहिए। तो आइए बाबूलाल जी से जानते हैं, बाबूलाल जी कि जो फिजिकल एक्सरसाइज का है वो कितनी देर आप करें तो बेहतर है, और कितना समय आप योग के ऊपर ध्यान दें या बाकी चीजों पर ध्यान दें।
कम से कम 30 मिनट का इसका अभ्यास हमें रोज नियमित कम से कम करना ही चाहिए।
फिजिकल जो साइड एक्सरसाइज साइड है उसका आसन है।
मेडिसिन से बचना है तो मेड को अपनाइए। इंग्लिश के तीन शब्दों से मिलकर मेड बनाए, MED, या एम करते मेडिटेशन, ई करते एक्सरसाइज और डी करते डाइटिंग। अगर तीन चीजों को आप फॉलो करोगे तो बहुत ही शानदार आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। प्रैक्टिकल का मेरा अपना अनुभव है।
और आप हमारे को थोड़ा और जीवन बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आप हमें कुछ व्यायाम करके दिखाएंगे जो सहज हो, जिसे हर कोई कर सके।
आज मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम बताने जा रहा हूं जिसका बहुत ही फायदा होगा। तो आज मैं भू प्रणाम कराऊंगा आपको। इसकी तीन स्टेप होती है। भू प्रणाम तीन स्टेप के द्वारा उधर के सारे प्रॉब्लम फिनिश हो जाएंगे। बैक पेन का प्रॉब्लम दूर होगा, गठिया घुटनों के प्रॉब्लम भी आपके दूर हो जाएंगे। इसे आप सुखासन में भी कर सकते हो। आल की पालकी लगा के बैठने वाले आसन को बोलते हैं हम सुखासन। इससे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा अर्ध पद्मासन। इस पैर को उठाकर यहां पर रख लेंगे, इसे बोलते हैं हम अर्ध पद्मासन। जो इजीली तरीके से बैठ सकते हैं वो बैठ जाएंगे पद्मासन, कमलासन। इसे हम पद्मासन या कमलासन बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं भू प्रणाम का पहला स्टेप, नमस्कार पोजीशन। एक मिनट के लिए हम उस परमात्मा को याद करेंगे। पहला स्टेप में भू प्रणाम का पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई पकड़ते हैं इसमें, फिर छोड़ देंगे, कमर के पीछे ले जाकर पकड़ना है। लंबी गहरी श्वास लेंगे, स्लो पोज में श्वासों को छोड़ते हुए झुकते हुए नासिका और कपाल भू पर टच करेंगे। सेकंड स्टेप होता है भू प्रणाम का। धीरे धीरे श्वासों को लेते उठ जाएंगे। हर एक स्टेप को मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 7 बार तक करना बहुत बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं भू प्रणाम का थर्ड स्टेप। अंगूठे से अंगूठों को क्लोज करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेते हाथे के पंजन को ऊपर की ओर खींचेंगे और ताकत से खींचेंगे, स्लो पोज में श्वासों को छोड़ते फिर झुक जाएंगे, हाथ के पंजे भू पर टच, फिर नासिका कपाल भू पर टच, धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे। इससे काफी तनाव खिंचाव पड़ेगा आपकी जंगर घुटने के ऊपर, इससे अर्थराइटिस के प्रॉब्लम, साइटिका के प्रॉब्लम, उधर के प्रॉब्लम, बैक पेन के सारे प्रॉब्लम दूर किया जाता है। फिर हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। 84 आसनों में से एक ही आसन ऐसा है जो भोजन के उपरांत किया जाता है। भोजन के बाद ना एक्सरसाइज किया जाता है, ना आसन किया जाता है, ना प्राणायाम किया जाता है। 84 आसनों में से एक ही आसन ऐसा है जो भोजन के उपरांत किया जाता है, इसे बोलते हैं वज्रासन। भोजन करने के बाद मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट इस आसन में बैठने से हमारी जठराग्नि का रोल फास्ट हो जाता है, कंस्टिपेशन के प्रॉब्लम दूर होते हैं, बॉडी को वज्रतुल्य बना देता है वज्रासन। ये ओनली भोजन के बाद इस आसन को किया जाता है, या कोई आसन करें तब इसका हम आधार ले सकते हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूं वज्रासन में डायबिटीज के लिए और पेट के सारे प्रॉब्लम दूर करने के लिए मंडूकासन। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, अंगूठा नीचे मुट्ठियों को बांध लेंगे, कोनिया को मोड़कर नाभि के आजू बाजू में रख लेंगे, फिर लंबी गहरी श्वास लेंगे, स्लो पोज में श्वासों को छोड़ते हुए झुकते हुए चेस्ट को जंगों से टच करेंगे, नेक उठा के सामने की ओर देखेंगे, मेंढक पोजीशन में वाला पोज, धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाते हैं। इस आसन की भी हर एक स्टेप को मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 7 बार तक करना बहुत बहुत जरूरी है। इसका एक स्टेप और बाकी, इसे हम बोलते हैं सेकंड स्टेप। लेफ्ट हाथ का पंजा खोल लेंगे, नाभि के ऊपर रखते हैं, फिर राइट हाथ का पंजा खोलेंगे, पंजे के ऊपर पंजा रख लेंगे, फिर उसी पोजिशन में फिर करेंगे, यही पोज।
बहुत ही अच्छे आसन हमें बताए बाबूलाल भाई ने। और दोस्तों आपने देखा, यदि आपको कोई घुटने की प्रॉब्लम है, आपको कमर की कोई दर्द की बात है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, आपकी बैक स्टिफ हो गई है, तो जो ये भू आसन है आपको बड़ा लाभ दे सकता है। मैं अब बात करना चाहूंगा भ्राता राम प्रकाश जी से, जो कि अमेरिका से हमारे बीच पधारे हैं। हमने फिजिकल एक्सरसाइज देखी योगा का जो रूप है, लेकिन जो योग का रूप है आप काफी समय से उसका अनुभव कर रहे हैं, और किस तरह से ये आपके रोजमर्रा के जीवन में आपको लाभ देता है?
मैंने देखा योग करने से बहुत बार हमको ऐसा महसूस होता है कि कई बार डिसीजन लेने में हमको ना जैसे लगता है कि इंटेलेक्ट क्लाउडेड होती है
जी,
इस तरफ करें उस तरफ, ज्यादातर देखेंगे एवरीथिंग इज इन ए क्रिटिकल बैलेंस इस समय। तो हमारा योग की थोड़ी सी भी शक्ति एक पॉजिटिव की तरह टिल्ट हो जाता है तो पूरा का पूरा हमारा सोचने और करने का ढंग भी वैसा बदल जाता है। तो मैंने देखा है कि जो योग करने के सुबह, क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग योग करने से, माना कोई भी नेगेटिव को आप उसमें देखेंगे थोड़ा सा पॉजिटिव मिलाएंगे तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होने से आपका जो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, आपका जो करने की एक कला है, जो करने का एक तरीका है, वो बदल जाता है, क्योंकि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाता है
जी, जी।
उसके कारण से आपको लगता है कि आपको दूसरों की भी एनर्जी मिलती है, क्योंकि आप जॉब पर जाते हो, क्योंकि खुशी अंदर में होती है तो आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है, तो लोग एक दूसरे से हेलो भी करेंगे। अगर आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, कोई आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उनको अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर चेहरा आपका क्रोध में है तो लोग आपसे डर के मारे भागेंगे।
आपने ये बहुत अच्छी एक बात कही, मैं बीच में सॉरी आपको कह रहा हूं, कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना चाहिए, उसमें अच्छा ढूंढ लेना चाहिए कुछ। आपने ऐसा कहा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये कैसे होता है, क्योंकि ये जादू की तरह है। जो एक हालात नेगेटिव है और आप उसमें अचानक पॉजिटिव सोचने लगे,
आप देखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे हम कहेंगे कोई आदमी स्टबर्न होता है और एक आदमी होता है डिटर्मिनेशन वाला होता है, दोनों में फर्क कुछ भी ज्यादा नहीं है। स्टबर्ननेस में भी 95% तो डिटर्मिनेशन ही होता है
जी।
लेकिन जब वो डिटर्मिनेशन टू मच में चली जाती है या थोड़ा सा डायरेक्शन उसका थोड़ा चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं स्टबर्न। कई बार कहते हैं अभी बहुत हो गया, अभी जाने दो। स्टबर्न बंदे को पता नहीं चलेगा कि कब उसको रोकने का है।
तो आप खुद जब कोई नेगेटिव हालात आता है तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं?
तो मेरे को बस वही होता है कि 95% तो वो बढ़िया है बंदा, थोड़ा सा उसको थोड़ा ट्विस्ट देना है, जिसको नाम कहते हैं गिविंग ए पॉजिटिव ट्विस्ट। उतने करने से ही आप लोगों की जो परिस्थिति को, उनके उनके हालात को, उनके समझने से, क्योंकि हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई आदमी क्रोध करता है, मैं कहता हूं मेरे को क्रोध करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, कहता नहीं लगता है, तो इसका मतलब उसने भी क्रोध किया, कुछ ना कुछ उसको चीज जंच नहीं रही है, कोई हेल्पलेसनेस है, कोई नेगेटिव है,
तो कहीं ना कहीं अच्छा नजरिया हमें रखना
चाहिए। मेरे चाहते उसका कोई पॉजिटिव उसको ना मदद कर दें तो वो भी पॉजिटिव हो जाए।
दीदी बहुत अच्छी राम प्रकाश जी ने बात कही है, आप बहुत अनुभवी हैं, आप नजरिए के बारे में हमें थोड़ा इसको और अच्छी तरह समझाइए और किस तरह से योग हमारा नजरिया भी उठाता है, हमें ऊंची नजर भी देता है।
क्योंकि योग के द्वारा हमें जो मानसिक शांति मिलती है, उस शांति के कारण हम उसी बात को एक सकारात्मक वे में लेते हैं। मान लीजिए कोई बात गलत हो भी गई, लेकिन क्योंकि अंतर में शांति है तो उस गलत बात को गलत है ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, हो गया, चलो इससे अनुभव बढ़ा, ये एक सकारात्मक सोच है कि इससे अनुभव बढ़ा, भले गलती हो गई, हो सकता है कुछ इससे नुकसान भी हुआ हो, लेकिन क्योंकि मेरा अनुभव बढ़ा तो आगे जब ये बात होगी तो फिर उसी अनुभव के आधार पर हम दोबारा ये भूल नहीं करेंगे।
सोच बदला तो जग बदल।
जैसे मान लीजिए इन्होंने पद्मासन की बात कही तो हम कहते चलो कोई पद्मासन न भी कर सके, सभी तो नहीं कर सकेंगे पद्मासन, लेकिन जीवन तो पद्म जैसा बना सकते,
कमल की तरह न्यारा और प्यारा बन सकता है। बहुत अच्छा दीदी जी, आइए एक क्लिप देखते हैं और एक और योगी से ये जानते हैं कि योग उनको किस तरह से लाभ देता है।
हमारे भारत में फिजिकल योग तो अनेक प्रकार के प्रचलित है और अनेक वर्षों से करते आए हैं। उसके साथ साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष राजयोग भी सिखाया जाता है, जिस राजयोग के द्वारा मन जो है वो तंदुरुस्त बनता है। फिजिकल योग से भी शारीरिक रोगों में फायदा होता है, परंतु जैसा कहा जाता है दवाई और दुआ, तो दुआ लेने का बड़ा सहज साधन है मन को ईश्वर के साथ लगाना, जिसको दूसरे शब्दों में राजयोग कहते हैं। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय 80 वर्षों से लेकर के ये राजयोग सिखा रहा है, जिससे अनेक आत्माओं को, अनेक भाई बहनों को इससे लाभ हुआ है और जिसके कारण ही मन जो है वो कंट्रोल में आया है। क्योंकि अगर मन तंदुरुस्त है तो तन जरूर तंदुरुस्त हो जाएगा, जिसका गायन हम लोग गीता में भी देखते हैं कि मन मना भव के महामंत्र से किया जाता है। तो मन को अगर ईश्वर के साथ लगाते हैं तो जरूर मन का असर तन के ऊपर होता है, और तन और मन दोनों भी जो है वो हम अपने तंदुरुस्त कर सकते हैं। इसीलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस राजयोग की जो शिक्षा दी जाती है, एक तरफ फिजिकल योग और दूसरा ये जो मानसिक योग सिखाया जाता है, इससे जीवन में बहुत ही परिवर्तन आता है, मन की शांति मिलती है, वातावरण जो है वो शांत होता है, और साथ साथ में सारे विश्व में भी हम शांति के प्रकंपन फैला सकते हैं। तो विशेष योग दिवस के ऊपर बहुत ही सामूहिक रीति से सब योग करके सारे विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैलावे, और सिर्फ एक ही दिन सिर्फ योग नहीं करे, परंतु अगर हम रोज एक आधा घंटा भी इसके लिए देवे तो उससे हमारा मन और तन दोनों भी तंदुरुस्त होकर के और सारे विश्व में शांति फैलाने का जो कार्य है वो हम लोग कर सकेंगे।
तो दोस्तों, आपने आज योग का पूरी तरह से लाभ लिया, आपने उसके मानसिक स्तर को जाना और कुछ व्यायाम सीखे, आसन सीखे जो आपको बहुत ही लाभ दे सकते हैं। जैसे बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है, इस योग रहस्य की इस सीरीज से आप थोड़ा थोड़ा सीखकर, थोड़ा थोड़ा भरकर अपने जीवन को बहुत स्वस्थ बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। और मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा हमारे इन मेहमानों का जो हमारे बीच आते हैं, अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को बांटते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो आप रूह को आकर सजाते हैं, रूह रूपी पुरुष को पुरुषोत्तम बनाते हैं। दोस्तों, योग वो रास्ता है जिससे पूरा हर ख्वाब होता है और योगी का जीवन लाजवाब होता है। आज के शो के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे योग की कुछ और गहराइयों के साथ। ओम शांति, नमस्कार।